ओम शांति। अभी का हमारा विषय है पारस बुद्धि। हालांकि आज की मुरली में पारस बुद्धि जैसा शब्द कोई आया नहीं है, लेकिन आज के इस विषय की प्रेरणा आज की ही मुरली है। कैसे? एक तो आज बाबा ने बच्चों को जब एड्रेस किया, एड्रेस करते समय बाबा का बहुत बहुत, बाबा रोज ही बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन आज बाबा का प्यार कुछ विशेष था। कैसे एड्रेस किया आज बाबा ने? हे मीठे लाल। वैसे रोज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, आज कहा हे मीठे लाल। क्या करो? रात को जाग कर बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो। श्रीमद कहती है बाप समान निरहंकारी बनो। तो एक तो याद करने की बात कही, दूसरी बात कही देही अभिमानी बनने की, और तीसरी बात कही निरहंकारी बनने की। और फिर मुरली के अंदर ये भी कह दिया कि बाप को याद करना ही देही अभिमानी बनना है। और अगर देही अभिमानी नहीं बनते हैं, देह अभिमान में रहते हैं, तो क्या होगा वो भी बताया। माया का वार होगा, और वो भी कोई साधारण वार नहीं होगा, जोर से वार होगा। और ऐसा वार होगा कि तुम्हारा बेड़ा क्या कर देगी? गर्क कर। कर दिया है, कर दिया है ऑलरेडी। शूद्र बन गए थे ना हम, तो द्वापर से कर दिया था, फिर बाबा मिला तो हमने नाव को संभाला, बेड़े को संभाला। लेकिन अगर फिर से अटेंशन नहीं देंगे, फिर से बेड़ा गर्क कर देगी। तो माया अटैक करके ही बेड़ा गर्क करेगी। और माया की अटैक किस पर होती है? बुद्धि पर होती है। माया की अटैक बुद्धि पर होती है। और इसीलिए बाबा कहते हैं पारस बुद्धि बनो। कल की मुरली में डायरेक्ट शब्द था, मैं तुम्हें पारस बुद्धि बनाता हूं, मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं। इसलिए ऐसे बाप को क्या करो? हाँ, बहुत याद करो। बाप याद से ही क्या होंगे? विकर्म विनाश होगा, पापों का जो बोझा है वो चुकतू होगा याद से ही। तो हमें भगवान को याद करने के लिए भी बुद्धि की तो मदद चाहिए। कहते ही क्या है, बुद्धि योग। अभी तक तो किससे याद कर रहे थे? साधनों से याद कर रहे थे, हाथ में थाली पकड़ के, हाथ में माला पकड़ के, साधनों से कर रहे थे। बुद्धि तो कहीं और भटक रही थी। और बाबा आए और कहा, बच्चे इन सब से मेरा योग नहीं लगेगा, मेरे से योग लगाना है तो अपने मन और बुद्धि को मेरे में लगाओ। लेकिन जिस मन बुद्धि को परमात्मा में लगाना है, अगर उस पर ही माया का अटैक हो जाए तो फिर संभव नहीं है मन बुद्धि को उस पर लगाना। और इसीलिए आज हमने ये टॉपिक लिया पारस बुद्धि। बुद्धि माना सबको पता है, पहला लेसन हम सबको कराते हैं। आत्मा की तीन फैकल्टीज हैं, मन बुद्धि संस्कार। क्या बताते हैं बुद्धि? निर्णायक शक्ति, फैसला देने वाली शक्ति, न्याय देने वाली शक्ति। तो बुद्धि अगर फैसला सही नहीं देगी, और बुद्धि को फैसला किस पर देना होता है? किस पर फैसला देना होता है? हाँ, जो मन उसके पास लेके आता है बातें हैं। मन लेके आता है ना उसके पास बातें, तो उसी पर बुद्धि फैसला देने वाली है ना। तो अगर मन उसको अपने वशीभूत करने में सफल हो जाए तो बुद्धि के फैसले एक तरीके से मन के ही फैसले हो जाएंगे, है ना। जबकि मन के पास अथॉरिटी नहीं है निर्णय लेने की, लेकिन बुद्धि को अपने जाल में फंसा फंसा के अगर अपनी ही चाहत वाला उससे करवा ले, मतलब मन ही क्या बन गया, निर्णायक शक्ति बन गया। और जब जिसके पास अथॉरिटी नहीं हो और वो अथॉरिटी लेकर बैठे तो वो तो बेड़ा गर्क करने वाली बात हो जाएगी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं तुम्हें पारस बुद्धि बनाता हूं। तो अगर बाबा हमें पारस बुद्धि बनाता है, इसका मतलब हम पहले कौन सी वाली बुद्धि थी हमारी, पत्थर बुद्धि थी। क्या मतलब होता है पत्थर बुद्धि का? हालांकि हम कहते हैं मन बुद्धि सूक्ष्म है, ये इंद्रियां जो दिख रही है, पांच कर्मेंद्रियां और पांच ज्ञानेंद्रियां, ये फिर भी स्थूल है, दिखाई पड़ती है। और मन बुद्धि संस्कार तो सूक्ष्म इंद्रियों की गिनती में आते, वो तो दिखाई भी नहीं पड़ते, फिर उसको पत्थर कैसे कह दिया? पत्थर तो बहुत जड़ होता है, दिखाई पड़ता है, क्यों कह दिया उसको पत्थर बुद्धि या जड़ बुद्धि भी कहते, क्यों? काम नहीं करती बुद्धि, नहीं। इसका अर्थ होता है जब पत्थर बुद्धि कहते हैं, जड़ बुद्धि कहते हैं, इसका अर्थ है कि देखो इन पांच इंद्रियों के माध्यम से, पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेंद्रिया, तो ये ज्ञानेंद्रिया बाह्य जगत में विचरण करती है, अंतर जगत में इसका कोई यूज नहीं है। इस आंख से अंदर का जगत दिखाई देगा क्या? इस कान से अंदर के जगत की आवाज सुनाई देगी? नहीं आएगी। तो इनका रोल बाहर की दुनिया का है और ये बाहर की दुनिया में विचरण करती रहती है, और बाहर की दुनिया में विचरण करते हुए डेटा कलेक्ट करती है, और डेटा कलेक्शन करके किसको देती है? मन को देती है। इसीलिए तो गीता में ये बात आई है कि शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे आत्मा है। तो परे का मतलब क्या है? उससे ऊंच, उससे श्रेष्ठ। यहां पर थोड़ी सी कट लग जाए, कुछ क्या कहें, खरोच आ जाए, इतना मायने नहीं रखता, लेकिन आंख में खरोच आ जाए तो देखने का कार्य रुक जाएगा, है ना। और इसीलिए कहा शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां, क्योंकि उनका रोल इससे ज्यादा है। यहां पे अगर कट लग भी गया तो ये क्या है, चमड़ी है, चमड़ी तो पूरे शरीर में फैली हुई है, इधर की चमड़ी नहीं तो इधर की चमड़ी से सेंसेशन मिल ही जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? और इसलिए कहा शरीर से परे इंद्रियां हैं, वो ऊंची है, पर इंद्रियों से परे मन है, मतलब इंद्रियों का स्वामी मन है। तो हर कोई अपने स्वामी के लिए काम करता है ना। आप दफ्तर में भी काम करते हैं, चाहे आपकी जो भी पोजीशन होगी, आप किसके लिए काम कर रहे होते? आप अपने से बड़े के लिए काम कर रहे होते हैं। आप जो भी कार्य करेंगे उसकी रिपोर्टिंग किसको देंगे? अपने से ऊंचे वाले को देंगे। तो इंद्रियां पूरी रिपोर्टिंग कहां देती है? मन को। और फिर मन बुद्धि के सामने सब कुछ परोस के रख देता है। और अगर बुद्धि, जिसको कहा पत्थर बुद्धि अर्थात जड़ बुद्धि, अर्थात ये शरीर जो जड़ है, और इस जड़ शरीर की इंद्रियों ने जो बाह्य जगत के ज्ञान लेकर आया है, और उसी ज्ञान के आधार से हमारे निर्णय होते हैं, उसको कहेंगे जड़ बुद्धि, उसको कहेंगे पत्थर बुद्धि। था ना ऐसे हमारे जीवन में, बाह्य जगत के ज्ञान के अनुसार ये भाई है, ये बहन है, मैं इसको भाई की दृष्टि से देखती हूँ, उसको बहन की दृष्टि से देखती हूँ। लेकिन अंतर जगत आत्मा का ज्ञान जब मिला तो अब मेरी देखने की दृष्टि बदल गई। ये भाई से पहले एक आत्मा है, इस आत्मा ने पुरुष का चोला पहना हुआ है। ये बहन से पहले एक आत्मा है, इस आत्मा ने स्त्री का चोला पहना हुआ है। डिफरेंट हो गया ना निर्णय। तो जड़ बुद्धि माना दुनियावी नॉलेज के आधार से जब हम निर्णय लेते हैं उसको कहेंगे जड़ बुद्धि या फिर पत्थर बुद्धि। और बाबा कहते हैं मैं तुम्हें पारस बुद्धि बनाने आया हूं, बनाता हूं। मतलब वो क्या करता है, चैतन्य के प्रति हमारी स्मृति को जगाता है। ये इंद्रियां तो बाह्य जगत का ज्ञान दे रही है ना, मैं हमें विवेक प्रदान करता है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, जन्मते ही हर ब्राह्मण को कौन सी गिफ्ट मिली है, दिव्य बुद्धि की गिफ्ट मिली है, रूहानी दृष्टि की गिफ्ट मिली है, ज्ञान का तीसरा नेत्र में जन्मते ही दे देता हूँ, दिव्य ज्ञान देता हूँ। और ये दिव्यता को ही बाबा ने शब्द यूज किया पारस। वैसे पारस शब्द का क्या अर्थ होता है, किसे कहते हैं पारस? हाँ, एक ऐसी धातु, एक ऐसा पत्थर, एक ऐसी मणि जो अपने स्पर्श से लोहे को न सिर्फ सोना पर पारस ही बना दे। दुनिया में कहते हैं लोहे को सोना बना देती है, परंतु अगर उसको भी पारस बना दिया तो चार चांद लग जाएंगे। और बाबा तो हमें ये नहीं कहता कि मैं तुम लोहे को सोना बनाने आया हूं, मैं तो तुमको पारस बुद्धि, इसका मतलब क्या, मैं तुम आत्माओं को जो बुद्धि जड़ बुद्धि हो गई है, मैं तुम्हारी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाकर तुम्हारे भीतर भी वो सामर्थ्य भर देता हूं कि तुम भी जाकर जड़ बुद्धियों को क्या करो, अपने स्पर्श से पारस बुद्धि बनाओ। तो इतना ऊंचा हमें वो बनाता है दिव्य ज्ञान देकर। लेकिन उसके लिए फिर एक बार ज्ञान तो मिल गया, वो जो चैतन्य की स्मृति दिलाई, आत्मा चैतन्य शक्ति है, उस चैतन्य शक्ति के गुण बताए, ओरिजिनल संस्कार और स्वभाव, वो अगर मेरे साथ व्यवहार जगत में नहीं आ रहे हैं, मतलब ज्ञान तिजोरी में तो है, प्रैक्टिकल में नहीं उतर रहा है। और इसके लिए फिर बाबा कहता है बच्चे देही अभिमानी बनो। देह अभिमान में रहेंगे तो माया अटैक कर लेगी और जबरदस्त बेड़ा गर्क कर देगी। हम जिसको आज बाबा ने कहा कि ब्रह्मा की मत भी शिव बाबा की मत की तरह मशहूर है। तो जब ब्रह्मा की बात आई तो शास्त्रों में पत्थर बुद्धि की बात किस पर आती है? शास्त्रों में कोई कहानी याद आती है कि कौन पत्थर बन गई थी? अहिल्या। कौन थी वो अहिल्या? ब्रह्मा की मानस पुत्री थी। और उसका विवाह किसके साथ कराया था उसने? गौतम ऋषि से। गौतम ऋषि से विवाह कराया था, काफी अच्छी उनकी गृहस्थी चली भी। फिर एक दिन घटना घटी उनके जीवन में, गृहस्थ आश्रम ठीक से चल रहा था, चलते चलते जीवन में एक घटना घट गई कि गौतम ऋषि के एब्सेंस में इंद्र ने उसके आश्रम में पदार्पण किया और उसकी पावनता पर दाग लगा दिया। जब तक उसकी पावनता पर दाग नहीं लगा था तब तक अहिल्या पारस बुद्धि थी। जिस दिन इंद्र ने छल किया, गौतम ऋषि का ही वेश धारण करके आया और उसने उसका विरोध भी नहीं किया। विरोध करती तो शायद छूट भी गई होती। नहीं, दुनिया में आज कितने किस्से होते हैं हम देखते हैं ना, विरोध किया जाता है ना तो विरोध में छूट जाते हैं, पर उसने विरोध नहीं किया है, एक्सेप्ट कर लिया है। और उस एक्सेप्टेंस के कारण उसकी पवित्रता पर दाग लग गया। लेकिन आपको मैं यहां बता दूं एक बात, शास्त्रों की इस कहानी को उठाकर लोग इसका पतंगड़ भी बना देते हैं। लोग कहते क्या सदियों से नारियों को ही ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा? परंतु मैं आपको बता दूं, ये अहिल्या कोई नारी नहीं है, ये तो बुद्धि का प्रतीक है। और बुद्धि स्त्रीलिंग में गिनी जाती है, मन पुल्लिंग में गिना जाता है ना। हमारे अलग अलग शब्द हैं ना, कि उन शब्दों का भी हम कैटेगराइज करते हैं कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। सागर को पुल्लिंग में रखेंगे, नदी को, ऐसी बुद्धि को स्त्रीलिंग में रखेंगे, मन को पुल्लिंग में रखेंगे। तो स्त्री कोई ऐसी वाली स्त्री नहीं है अहिल्या। अहिल्या तो ब्रह्मा की मानस पुत्री है और ब्रह्मा तो बुद्धि के देवता, क्योंकि शिव बाबा ने आगे क्या किया, ज्ञान का ही तो बीज बोया ना उसमें, उसी ज्ञान के द्वारा तो जीवन में रूपांतरण आया ना। तो शिव बाबा ने उसको बुद्धि दी, अर्थात दिव्य बुद्धि, दिव्य ज्ञान दिया, और उसी दिव्य ज्ञान को हर मानस पुत्र और पुत्री को दे रहा है वो। हम सब क्या है उनके, तो हमको भी वही ज्ञान दे रहा है। तो कहा अहिल्या मानस पुत्री, अर्थात वो भी बुद्धि का ही प्रतीक। और वो इतनी रूपवान, इतनी गुणवान कि हर कोई उस पर आकर्षित, इंद्र भी उस पर आकर्षित था, पर ब्रह्मा जी नहीं चाहते थे। यहां तक कि खुद अहिल्या भी इंद्र पर आकर्षित थी। ऐसे नहीं कि सिर्फ इंद्र को चाहना थी कि अहिल्या मेरी बन जाए, लेकिन अहिल्या भी चाहती थी मैं इंद्र की हो जाऊं। लेकिन ब्रह्मा की पुत्री है ना, अभी तो पिता डिसाइड करेगा ना, पिता ने डिसाइड किया। इंद्र माना, इंद्र माना भोगी, इंद्र माना भोगी। एक भोगी के हाथ में मैं अपनी बेटी को दूंगा, उसको भी भोगी बनाकर रोगी बना छोड़ेगा। और इसलिए ब्रह्मा तलाश में था किसी योगी पुरुष के हाथ में मैं अपनी बेटी को दूं, और वो योगी पुरुष था गौतम ऋषि, और उस गौतम ऋषि के साथ उसका विवाह करा दिया। लेकिन इंद्र की चाहना के खिलाफ हो गया है सब कुछ, और इंद्र ने ब्रह्मा जी से कह दिया, तूने ये काम तो भल कर दिया, लेकिन एक दिन आएगा मैं तेरे सामने ऐसी नौबत खड़ी करूंगा जो तूने मेरी बेइज्जती की है, तेरी भी सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। कहां की कहानी है ये, ये संगम की कहानी है, ये संगम की कहानी है कि जब तक बाबा नहीं आए थे, या यूं कहें कि परमधाम से अपनी यात्रा हमने शुरू की और हम सतयुग में आए, और चूंकि हम सतयुग में परमधाम से आए हैं तो बाबा ने कहा वहां बिना प्रयास के आप देही अभिमानी स्थिति में रहते हो। आज की मुरली में यही था कि अगर देह अभिमान में रहेंगे तो माया अटैक करेगी। तो इस कहानी में इंद्र माया समझो और उसने बुद्धि अहिल्या पर अटैक किया है, लेकिन बाबा कहते हैं सतयुग में तुम्हारी स्थिति क्या होगी, देही अभिमानी स्थिति होगी। और देही अभिमानी स्थिति का अर्थ क्या होता है, फिर उसका अर्थ क्या होता है, वो नेचुरल रहेगी हमारी। तो मतलब क्या है उसका नेचुरल होने का, मतलब जो हमारे गुण है जिसको आज हम कमेंट्री दे देकर अपने आप को याद दिला रहे, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये सोचना स्वरूप है हम। लेकिन यहाँ के सोचना स्वरूप से भले स्टेज हमारी शुरू सोचना स्वरूप से हुई, लेकिन प्रोग्रेस करते करते हम अवश्य स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अब आप कहेंगे स्मृति स्वरूप मतलब क्या होता है, हम अपना नाम लेके बार बार बोलते हैं क्या, मैं इंद्रा हूं, मैं इंद्रा हूं, मैं इंद्रा हूं, मैं बहन हूं, मैं बहन हूं, मैं बहन हूं, स्मृति में है ना, सबको स्मृति में है ना मैं कौन हूं, भले ही दैहिक जगत वाला पर स्मृति में है ना, कोई रिपीट कर रहे हो क्या आप। तो देही अभिमानी स्थिति माना चैतन्य की स्मृति, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट क्रिएटिंग थॉट। यहां पे हम थॉट थोड़ी क्रिएट कर रहे हैं, मैं इंद्रा हूं, मैं इंद्रा हूं, मैं बहन हूं, मैं बहन हूं, ये थॉट थोड़ी, लेकिन मेरी स्मृति में है ये। हमें पता है मनुष्य है मनुष्य है, जब तक हम शूद्र थे मैं मनुष्य हूं मनुष्य हूं बोलते हैं, अभी हम बार बार थोड़ी बोलते हैं मैं ब्राह्मण हूं मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन हमारी स्मृति में है कि मैं ब्राह्मण हूं और इसलिए मुझे ब्राह्मणों की नियम मर्यादाओं पर चलना है। तो जो कहा कि बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति वहां नेचुरल होती है सतयुग त्रेता में, अर्थात वहां कोई आत्मा अपने आप को ये कहेगी नहीं कि मैं देवता हूं मैं देवता हूं मैं देवता हूं मैं देवता हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं मैं ज्ञान स्वरूप हूं मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं प्रेम स्वरूप हूं प्रेम स्वरूप हूं, लेकिन वो प्रैक्टिकल जीवन में होगा। और ज्ञान स्वरूप का मतलब क्या होता है, ज्ञान स्वरूप का मतलब क्या होता है, विवेक। ज्ञान स्वरूप का मतलब होता है स्मृति में जीना। बाबा कहते हैं पूरा ही खेल स्मृति और विस्मृति का है। तो सतयुग त्रेता में नेचुरल देही अभिमानी स्टेज है, मतलब हम स्मृति स्वरूप में जी रहे हैं और इसलिए मुझे सच्चाई पूरी पता है, और वो सच्चाई से पता नहीं है मेरे प्रैक्टिकल जीवन में मेरे से रेडिएट हो रही है, और उसी ज्ञान स्वरूप का नाम है गौतम ऋषि। उसी ज्ञान स्वरूप का नाम है गौतम ऋषि, उसी का नाम है विवेक। गौतम शब्द अपने आप में दो शब्दों से बना हुआ है, ऋषि माने पवित्रता और गौतम शब्द गौ प्लस तम, तम माना अंधकार, जो अज्ञान के अंधकार से परे है वो है गौतम। तो अगर मैं ज्ञान स्वरूप हूं तो अज्ञान के अंधकार से परे हूं ना, विस्मृति से मैं परे हूं, अर्थात मेरी बुद्धि गौतम के साथ गठबंधन में, विवाह माना क्या, गठबंधन, दोनों जुड़े रहना, अर्थात हमारी बुद्धि का कनेक्शन, अहिल्या का कनेक्शन गौतम ऋषि के साथ बना हुआ है। अज्ञान के अंधकार से जो परे है वो गौतम, तम माना अंधकार और गो माना जो चले गया परे, जाना, अंग्रेजी में गो कहते हैं ना, गो माना जाना, और ये हमारे संस्कृत से ही निकला शब्द है कि जो अज्ञान के अंधकार से परे चला गया है वो हमारा स्मृति स्वरूप, वो हमारा ज्ञान स्वरूप, वही गौतम। और चूंकि हम ज्ञान के अज्ञान के अंधकार से परे हैं, हम पवित्र हैं, हम पवित्र हैं, तो योगी हुए, तो कहा अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से, गठबंधन किसके साथ है अहिल्या का, गौतम ऋषि से। तो दो युगों तक तो हमारी जीवन अच्छी चली, कहते ना काफी लंबे समय तक अहिल्या और ऋषि का घर गृहस्थ बहुत अच्छी से चला। फिर एक दिन वारदात हुई, एक दिन घटना घटी, कब घटी वो घटना, वो एक दिन कौन सा था, जब द्वापर आरंभ हुआ। देही अभिमानी स्थिति नेचुरल है हमारी कहाँ पे, सतयुग त्रेता में, और अभी संगम में नेचुरल बनाई जा रही है, अभी प्रोसेस में है, प्रोसेस में है, चढ़ती कला में है, चढ़ती कला में आगे बढ़ते बढ़ते चढ़ती कला की एक लिमिट है, जैसे चंद्रमा अमावस के बाद चढ़ती कला में जा रहा है, लेकिन उसकी एक लिमिट है कि 16 कला संपूर्ण होने के बाद अभी वो और आगे नहीं बढ़ सकता, उतनी ही उसकी पराकाष्ठा है, उतनी ही उसकी चरम सीमा है, वहां तक बढ़ गया, अब बढ़ने के बाद फिर उतरती कला। तो यहां की देही अभिमानी स्थिति और सतयुग त्रेता की देही अभिमानी स्थिति में ये अंतर है। अभी वाली देही अभिमानी स्थिति चढ़ती कला की ओर है, जो चढ़ते चढ़ते 16 कला संपूर्णता को पहुंचेगी, और जिस दिन 16 कला संपूर्णता को पहुंचेंगे फिर हम परमधाम की यात्रा पर चल पड़ेंगे, और परमधाम में बाबा कहते बस छूकर वापस आना है, तो वापस सतयुग में आएंगे। जैसे ही सतयुग में आएंगे देही अभिमानी स्थिति डेफिनेटली 100% जब उतरे है, लेकिन उतरती कला वाली हो जाएगी। दूसरे शब्दों में बुद्धि और विवेक माना ज्ञान स्वरूप का कनेक्शन, या यूं कहे अहिल्या और गौतम ऋषि का कनेक्शन, उसका जो कनेक्शन की जो दृढ़ता है वो 100% से अभी कम हो रही है। समझ में आ रही बात, वो दृढ़ता, वो गठबंधन जो होता है ना मजबूत, उस मजबूती में क्या आ रही है, कमजोरी आ रही है, और अर्थात दूरी थोड़ी थोड़ी, पूरे दूर नहीं हुए हैं, समझ में आ रही ना बात, थोड़ी थोड़ी। और द्वापर आते आते जीरो पे चले जाएगी स्मृति, मतलब मजबूती जो थी गठबंधन की वो जीरो पे चले जाएगी, अर्थात अहिल्या को विस्मृति हो जाएगी ऋषि की, ऋषि को विस्मृति हो जाएगी, इसीलिए उस कहानी में आता है कि ऋषि भी, क्योंकि इंद्र इस फिराक में था, कि कब मैं इसको अकेले में जाके मिलूं। क्यों अकेले में, क्यों नहीं गौतम ऋषि के प्रेजेंस में? क्योंकि उसको पता था अहिल्या पतिव्रता नारी है, गौतम ऋषि के प्रति पूर्ण समर्पित है, और उसके सामने में जब जाऊंगा वो मुझे कदापि स्वीकार नहीं करने वाली है। चाहना तो स्वीकार कराने की है, तो ऐसे जाकर तो कोई फायदा नहीं है। और वो इसी मौके की तलाश में था कि जब ये उससे अलग हो। अब अलग कैसे हो, क्योंकि जब अलग होते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में इधर दुनिया जाग जाती है, तो दुनिया देख लेगी, वो नहीं देखेगा तो दुनिया देख लेगी। और इसलिए कहानी में ऐसा आता है कि मुर्गे की सहायता ली कि भाई तुम अभी रात है लेकिन फिर भी तुम बांग दे, वो क्या मुर्गा बांग देता है ना, जिसके आधार से लोग समझते हैं कि अभी सुबह हो रही है, तो उसकी आवाज सुनकर गौतम ऋषि उठते। हालांकि अभी रात है परंतु चूंकि मुर्गे ने बांग दी है तो गौतम ऋषि उठ जाता है और कहता आज ऐसे कैसे मुझे दे रही हो, क्योंकि उसका नियम था ब्रह्म मुहूर्त में जाकर गंगा जी के पास स्नान करके आना। तो इसने भाग जल्दी ली थी तो वो भी चला गया, तो ये भी तो भ्रम में आ गया ना। तो सोचने की बात है कि जो स्वयं विवेकशील है वो भ्रम में कैसे पड़ा। न सिर्फ अहिल्या भ्रम में पड़ी है, दोनों के दोनों ही तो भ्रम में पड़े हैं। समझ में आ रही है बात? और ये क्यों हुआ है, क्यों हुआ है, जिसको बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा दोष नहीं है, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। और अर्थात जो कहा कि फिर वो ऋषि आया भी है, तो ये बात ऐसी है कि जब भी हम जागे हुए होते हैं, जागते 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 एक समय आता है कि हमें लगता है अभी हमें सोना है, लेकिन नींद में एकदम से जंप नहीं मारते हैं। कहते हैं जागरण और निद्रा के बीच वाली अवस्था होती है तंद्रा की। उस अवस्था को कि अभी जागे हुए भी नहीं है पर सोए हुए भी नहीं है, बीच वाले स्टेज में है, आधी जागरण है और आधी नींद है। इसीलिए आप बच्चे को देखो गोद में जब होता है ना, तो कहते हैं इसकी अभी कच्ची नींद है, इसको मत छेड़ो, बोलते नहीं। कच्ची नींद का मतलब क्या, वो जगा हुआ भी नहीं है, पूरा सोया हुआ भी नहीं है, और ऐसे समय में उसको छेड़ोगे वो बहुत परेशान करेगा। कहते नहीं कहते, वो तंद्रा वाली स्थिति होती है। तो तंद्रा वाली स्थिति में क्या होता है, आंख खुलती भी है बंद भी होती है, खुलती भी है बंदी होती होता है ना। तो ये आंख मिचौनी का खेल होता है कब, त्रेता के एंड और द्वापर के आरंभ में, स्मृति और विस्मृति का फटाक से नहीं होता है, नींद में फटाक से थोड़ी चले जाते हैं, बीच में तंद्रा वाली स्टेज आती है ना। और इसलिए दोनों भ्रमित हुए हैं, कोई एक नहीं हुआ है, दोनों के दोनों हुए हैं। और इसीलिए कहा कि फिर आया, पहले भ्रमित हो गया फिर आया, फिर होश आ गया, होश आ गया। और इधर अहिल्या को भी कहते हैं कि पूरी जागृति थी, इंद्र ने जब उसके सामने आके प्रस्ताव रखा काम क्रीड़ा का, आया तो किस भेष में था, गौतम ऋषि के भेष में था। तो उसने पति समझा उसको, वास्तविकता ये नहीं है, वो समझ गई थी, क्योंकि पति उसका योगी पुरुष, पति ऐसा प्रस्ताव कैसे रखेगा, योगी पुरुष कामक्रीड़ा का प्रस्ताव रख सकता है क्या, नहीं रख सकता है। तो समझ तो गई थी फिर भी स्वीकार किया, क्यों, क्यों स्वीकार किया, क्योंकि दो युगों तक जो देही अभिमानी स्थिति थी वो उतरती कला में जा रही थी, और उसी दौरान देह अभिमान प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से जगत के समाचार अंदर जा रहे थे, चित्त की भूमि पर वो बीज पड़ते जा रहे थे। पर मौसम अभी नहीं आया था उनके बाहर प्रस्फुटित होने का, तो अंदर बीज पड़ते जा रहे थे। इंद्रियों के माध्यम से सब कुछ तो अंदर जा रहा था ना, तो बीज के रूप में अंदर थे। और जैसे ही मौसम आया, अर्थात दो युग बीते, और मौसम आया माना आके उसने प्रस्ताव रखा, आकर्षण हो गया, विरोध नहीं कर पाई। इसी को बाबा ने कहा कि दो युगों तक तुम कामना रहित होते हो, इच्छा मात्रम अविद्या वाली स्थिति होती है, लेकिन दो युगों के बाद कामना वाली जीवन आरंभ हो जाती है और वही कामना आपको गिराती चली जाती है, जिसको ही बाबा ने कहा माया ने तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दिया। और फिर बाबा ने आके वापस गौतम ऋषि के साथ हमारा कनेक्शन जोड़ा, अर्थात दिव्य बुद्धि प्रदान की हमें, हमें दिव्य बुद्धि प्रदान की। वरना अहिल्या शब्द का अर्थ क्या होता है? जो कभी हिले नहीं, लेकिन हिल गई। कब हिली? जब इंद्र आया, जब गौतम ऋषि की एब्सेंस रही, लेकिन तब तक नहीं हिली जब तक गौतम ऋषि अर्थात दिव्य ज्ञान की स्मृति थी, तब तक नहीं हिली। लेकिन जैसे ही स्मृति स्वरूप से बाहर निकली, हिल गई, इंद्र के पास में आ गई, मन ने उसको अपने अधीन कर दिया और बेड़ा गर्क हो गया। और उसी को कहा उस समय, उसको श्राप दे दिया, तू जड़वत हो जा। जड़ नहीं कहा, तू जड़ हो जा, जड़वत हो जा, नहीं तो सच्ची में कोई जड़ बन जाएगा क्या? जड़वत। और तब कहा कि उसने माफी मांगी, इंद्र से गलती हुई है, उसने भी माफी मांगी, दोनों ने माफी मांगी। और दोनों ने माफी मांगी तो कहा एक बार श्राप मिल चुका, वापस नहीं होगा, लेकिन उसको हल्का किया। इंद्र के श्राप में क्या था कि तेरे पूरे शरीर में जिस योनि के लिए तू आकर्षित हुआ है, वो सारी स्त्री योनियां पूरे शरीर में तेरे आ जाए। और उसको शर्म आने लगी कि ये केरा कैसा मेरा स्वरूप, और इसलिए माफी मांगी तो हल्का किया, उसको आंख में बदल दिया। और इसीलिए कहते इंद्र की सहस्त्र आंखें। और इसको कैसे हल्का किया? इसने भी माफी मांगी कि गलती हो गई, और इसको क्या किया कि राम जब आएंगे, उसकी चरण रज जब तुम्हारे पर पड़ेगी, तब तुम पहले जैसे हो जाओगे। अब यहां से हमें क्या सीखना है? हम भट्टी में आए हैं ना, हम भट्टी में आए हैं। यहां से ये सीखना है कि हमें पता तो चल गया है कि हम देह अभिमान में क्यों आ गए थे, फिर बाबा ने वापस देह अभिमानी बनाया, लेकिन अब हमें अटेंशन में रहना है, अब हमें अटेंशन में रहना है। बीज है बार बार देह अभिमान की ओर जाने के लिए, लेकिन उसको वैसा मौसम दे ही क्यों हम? और जो बीज है भीतर में, जो इस जन्म के तो हमें दिखाई देते थे कि मैंने कहां कहां क्या क्या गलती की है, कभी लोभवश, कभी मोहवश, कभी अहंकारवश, उसको प्रकट करो, उसको प्रकट करो। और इसीलिए कहा जा रहा है बाबा को लिखो, बाबा को बताओ, क्योंकि पाप का प्रगटीकरण नहीं किया, अहिल्या ने भी तो स्वीकार कर लिया ना, गलती हुई है पर मुझे माफ करो। ऐसे ही जब तक हम बाबा को कहकर नहीं बताएंगे तो वो जो बीज है पापों के अंदर ही अंदर बढ़ते रहेंगे। जितना छिपा कर रखेंगे उतनी उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। और पुण्य के बीज को क्या करते हम, पापों को छुपाते हैं, पुण्यों को छपवाते हैं। छपवाते हैं ना, जिसको छपवाना चाहिए उसको छिपाते हैं और जिसको छिपाना चाहिए उसको छपवाते हैं। क्योंकि पापों को छिपाते रहेंगे वो बढ़ता रहेगा और अगले जन्म में भी साथ रहेगा। क्योंकि हमें ये पता है अगला जन्म तो नहीं है, ये अंतिम जन्म है, तो फिर नए युग में जब आना है तो धुलाई के नाम पर बहुत अच्छी सजा मिलेगी। जैसे बाबा कहते हैं ना, मैं भी जब तुम्हें सजा मिलेगी बिना साक्षात्कार कराए नहीं सजा देने वाला हूं। ऐसे ही माफी के लिए भी बाबा कहता है तुम खुद पहले साक्षात्कार करो अपनी गलतियों का और मेरे सामने रखो, तब उसके बीज क्या होंगे, कमजोर पड़ेंगे। प्रकट करो लेकिन किसके सामने, उसके सामने, परिवार के सामने नहीं। परिवार के सामने प्रकट कर देंगे तो आपकी कमजोरी को पकड़ के बार बार उलझने देते रहेंगे आपको। मित्रों के सामने प्रकट करोगे तुम्हारी कमजोरी को पकड़ के बार बार तुम्हें ब्लैकमेल करते रहेंगे। संसार के सामने करोगे, संसारी लोगों के सामने तुम्हारी कमजोरी को लेकर बार बार तुमको बदनाम करते रहेंगे, तो उसमें तो और ही गिरती कला हो जाएगी हमारी। और इसलिए प्रकट करो पर सबके सामने नहीं, किसके सामने, बाबा के सामने प्रकट करो। जैसे वो सजा नहीं देता है बिना साक्षात्कार कराए, ऐसे वो माफी भी नहीं देता है बिना हम उसको साक्षात्कार कराएं कि बाबा ये मेरी कमियां है, कमजोरियां हैं। तब तक वो भी हमें माफ नहीं करता, और जब तक माफ नहीं होगा तो उतरती कला में ही रहेंगे ना, चढ़ती कला में तो हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा, देही अभिमानी स्थिति तो बनेगी नहीं। तो ये हमें बाबा ने विधि दी है, देही अभिमानी बनना है तो बाप को याद करना है। पर बाप को याद करने में मन लगे उसके पहले ये सफाई और धुलाई। क्योंकि रुमाल पर अगर रंग चढ़ाना है तो मैला रुमाल पर रंग नहीं चढ़ा सकते। किसी भी कपड़े पर रंग चढ़ाना हो तो रंग चढ़ाने से पहले उसे धो लिया जाता है। तो मेरी बाबा के साथ याद अटूट बने उसके लिए मैं खुद अपने गलतियों का साक्षात्कार करके वो बाबा के सामने रख दूं, जी बाबा मेरे में ये है, और उसके बाद वो रंग चढ़ाना शुरू करेगा। उसके बाद वो मौन इतना सधेगा कि बीज रूप स्थिति आसान हो जाएगी। बीज रूप स्थिति माना ही जहां संकल्प भी ना चले, जहां वाणी भी ना चले, जहां कर्म भी ना हो। यही तो बताते हैं ना, स्थूल दुनिया है जो टॉकी और मूवी वर्ल्ड है, और परमधाम ऐसी दुनिया है जहां नो टॉकी नो मूवी, बीज रूप अवस्था, न संकल्प न वाणी न कर्म, इतना मौन। और जब इतना मौन हम हो जाएंगे उस परमधाम में जाकर, बाबा के पास जाकर बैठ जाएंगे, फिर बाबा क्या करेगा, बाबा को करना है, फिर हमें नहीं करना है कुछ, हमें सिर्फ समर्पण कर देना है अपने आप को उसके पास। एक कठपुतली अपने धागों को जब अपने नचाने वाले बाजीगर के हाथ में समर्पित करती है, तभी बाजीगर उससे अच्छा नृत्य करवा सकता है, वरना अच्छा नृत्य नहीं हो सकता है। हम भी अच्छा नृत्य करें इस जगत में, उसके लिए जरूरी है हम समर्पण कर दें उसके पास। हम उसके पास जब चले जाएं, बीज रूप, नो थॉट, नो टॉक, नो एक्शन, ऐसी स्थिति में अब वो मेरे पर काम करेगा। क्या काम करेगा मेरे ऊपर? मेरे अंदर दोनों बीज पड़े हैं, वो सतयुगी बीज भी पड़े हैं देवताई क्वालिटी के, मेरे आदि गुण भी पड़े हैं शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप, और इधर दो युगों में इंद्र के जाल में आकर, मन के जाल में आकर, माया के जाल में आकर जो पापों के बीज तैयार कर दिए, वो भी बीज है। आप देखो सेवन डेज कोर्स का जो हमारा किताब है, उसमें महाशिवरात्रि का जो चित्र है, उसमें परमात्मा की किरणें आ रही है और हाथ में पृथ्वी का गोला कुछ ऐसा ही दिखाया है, और उसमें काम क्रोध लोभ मोह दिखाया है, और किरणें आ रही है और वो उनको एक एक विकार के समानांतर एक राक्षस भी दिखा दिया है, और वो क्या हो रहे हैं? भस्मीभूत हो रहे हैं, ऐसे दिखाया है ना। और फिर दूसरा योगी बैठा है एक, परमात्मा का फव्वारा ज्ञान प्रेम शक्ति का उसको क्या कर रहा है? भरपूर कर रहा है। मतलब क्या? हमारे भीतर दोनों है, पाप के भी बीज है, पुण्य के भी, देवत्व के भी, दानत्व के भी। अब जब भगवान के पास जाकर बैठेंगे, उसकी किरणें मेरे पर जब पड़ेगी, ये दो जो अलग अलग फोल्डर है मेरे अंदर, इस वाले फोल्डर पर पड़ेगी, इसको भस्मीभूत करेगी। जो माया के बीज है काम क्रोध लोभ के, इसको भस्मीभूत करेगी। और ये वाला जो फोल्डर है जिसमें मेरा प्रेम स्वरूप ज्ञान स्वरूप के बीज, संस्कार ही है ना, भी संस्कार को बीज ही कहा ना, उसमें इतनी पावर भर देगी, इतनी पावर भर देगी कि जो मैं अपनी मेहनत से स्मृति स्वरूप होके नहीं चल पा रही थी, भूल जाती हूँ ना, सिर्फ याद करती हूँ तब याद रहता है मैं प्रेम स्वरूप हूँ और प्रेम के वाइब्रेशन फैल रहे हैं कमेंट्री से, है ना, लेकिन प्रैक्टिकल में वो प्रेम स्वरूप नहीं आ रहा है ना। लेकिन वो परमात्मा की शक्ति उसके अंदर इतनी भरेगी, अर्थात वो बीज जो बहुत समय से विस्मृति में पड़े हुए हैं, उसको ताकत मिलेगी, उसकी स्मृति की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और ये जो बीज थे, इनकी स्मृति की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, समझ में आ रहा है, इनकी विस्मृति हो जाएगी। इसी को कहा भस्मीभूत, और इस वाले की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ये उजागर होकर आएंगे। तो अपनी ताकत से ये संभव नहीं है कि मैं सोचती रहूं मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं और सचमुच मेरे से शांति फैलना शुरू हो जाए। अपनी ताकत से इतना पॉसिबल नहीं है, उस परमात्मा के आगे समर्पण करना पड़ेगा, अपनी वाणी को अपने विचारों को विश्राम देना पड़ेगा। मैं समर्पित हूं बाबा आपके सामने, अब जो कुछ करना है आपको करना है। और इसके पीछे एक विज्ञान भी है, और वो विज्ञान में थोड़ा आपके सामने रख दूं तो शायद इस पे, क्योंकि बुद्धि बार बार संशय उठाती है, क्या ऐसे भी होता है बस चुपचाप उसके पास बैठने से ऐसा काम हो जाएगा? मन कहता है ना बुद्धि, क्योंकि हम कौन से जगत में जी रहे हैं, वैज्ञानिक जगत में जी रहे हैं जहां हर बात के लिए हमें तर्क चाहिए। तो इसको वैज्ञानिक तर्क भी मैं आपको, आप क्या इस पे निश्चय बैठे, क्योंकि बाबा हमेशा कहते और कुछ मत करो, बस मेरे पास आकर बैठ जाओ परम धाम में। और पास बैठने से ही बहुत इफेक्ट आता है। आप आग की भट्टी के पास चले जाओ, बराबर गर्मी का अनुभव होगा। बर्फ की फैक्ट्री के अंदर चले जाओ, ठंडक का अनुभव अपने आप हो जाएगा। बगीचे की तरफ चले जाओ, सुगंध का एहसास अपने आप होने लगेगा। होगा या नहीं होगा? उसके पास जाने की जरूरत होती, आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ पास जाके कनेक्ट हो जाना पड़ता है और काम बन जाता है। हम सोचते हमें कुछ करना है, हमें कुछ करने के चक्कर में ही हम पीछे रह गए। काना अहंकार, ये जो मैं बोल रही हूं ना, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, अहंकार का अर्थ होता है मैं या मेरा का उद्घोष करने वाला। जब मैं और मेरा का उद्घोष चल रहा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, जो भी है, इसका मतलब मैं अभी भी अपने सूक्ष्म इंद्रिय का इस्तेमाल कर रही हूं, मैं अपने स्वयं चैतन्य आत्मा में स्थित नहीं हुई हूं। जैसे हमने कहा कि योग करने के लिए स्थूल इंद्रियों को क्या कर दीजिए, क्या करते हम इनको अंतर्मुखी बना देते ना, मतलब अभी तुम्हारे से हमें कुछ भी काम नहीं लेना है, वही मतलब होता है ना, क्योंकि इनका तो बाह्य जगत में काम है, पर हम तुमसे काम नहीं लेना चाहते, इसको हमने अंतर्मुखी बना दिया। ना आपका मुख उधर होगा, ना तुम काम पे लगोगी। तो हम इंद्रियों को तो अंतर्मुखी बनाते हैं, लेकिन सूक्ष्म कर्मेंद्रियां जो मन बुद्धि, उनको नहीं बनाते हैं। तो अभी भी मैं बोल रही हूं ना, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐसे कहते हैं ना, अहंकार माना मैं बुद्धि मैं बोल रही है। तो मैंने यंत्र का इस्तेमाल अभी तक रोका ही नहीं है, तो मेरा ध्यान तो अभी तक यंत्र पे है, तो मैं यंत्र से डिटैच हुई नहीं हूं। और यंत्र से डिटैच हुई नहीं हूं मतलब मैं अपने ओरिजिनल चैतन्य स्वरूप बीज रूप स्थिति में स्थित कहां हूं मैं अभी। और जब तक मैं बीज रूप स्थिति में नहीं स्थित होंगी, बाबा की शक्तियां मेरे पर काम नहीं करेगी। तब कहा मन का मौन, मौन की बहुत ज्यादा जरूरत है जीवन में अगर परिवर्तन चाहिए तो, वरना सालों साल ज्ञान के मार्ग पर चलते रहो और मौन को नहीं साधा, जितनी प्रगति होनी चाहिए उतनी नहीं होगी। और बाबा मुरलियों में कहता है, इस बात को कहता है, बच्चे चेक करो, जितना चाहते हो, जितनी प्रगति होनी चाहिए उतनी हुई है, इसे संतुष्ट हो, कहता है ना मुरली में बाप पूछता है। तो कैसे काम होता है सिर्फ बैठ जाने से, तो इसका वैज्ञानिक सपोर्ट क्या है? तो एक कहते हैं कि संगीतज्ञों का अनुभव है कि एक बंद कमरे में एक कोने में एक वीणा रख दो और दूसरे कोने में दूसरी वीणा, और एक कोने की वीणा को कोई संगीतज्ञ मन जा हुआ उसकी तारों को छेड़े और स्वर लहरी को पैदा करे, तो वो स्वर लहरियां हवा के माध्यम से आगे बढ़ती हुई, क्योंकि कमरा खाली है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है उसको, तो वैसे के वैसे वो प्रकंपन को रूप भी नहीं बदलेगा और वैसा ही प्रकंपन ये दूसरे कोने में जो वीणा रखी हुई है उसको आके छेड़ेगा। वहां पर तो किसी व्यक्ति ने छेड़ा तारों को, और वहां से जो छेड़ा व्यक्ति ने, उसमें से जो प्रकंपन निकले, अब ये प्रकंपन वहां जाकर उसको अपने आप छेड़ते हैं और वैसा ही स्वर निकलता है। ये संगीतज्ञों का अनुभव है। ऐसे ही कहते हैं, एक राजा, एक वैज्ञानिक एक राजा के घर में ठहरा। उस कमरे में जहां उसको ठहराया गया था, दीवार में दो घड़ियां थी। पुरानी बात है, 100-125 साल 150 साल पहले की, तो डेफिनेटली उस समय घड़ियां पेंडुलम वाली होती थी। दोनों घड़ी बड़ी थी, लेकिन कंपेरेटिवली एक बड़ी एक छोटी थी। उसका ध्यान जब उस दोनों घड़ियों पर गया तो देखता है कि दोनों घड़ियां एक्सेक्ट सेम टाइम दर्शा रही है, सेम डिटो। और उसको लगा ऐसे कैसे, सेकेंड का काटा दोनों का एक जगह, मिनट का काटा दोनों का एक जगह, घंटे के काटा दोनों का एक जगह, पेंडुलम की पोजीशन दोनों की एक जगह, ये कैसे हो सकता है? इसको समझने के लिए उसने क्या किया, रात में एक घड़ी को बंद कर दिया। सुबह उठा तो टाइम डिफरेंस दिखा, लेकिन सुबह उठ के वापस सेट किया, उसको चालू किया, लेकिन पर्पसली जानबूझकर 4-5 मिनट का अंतर रखा, क्योंकि स्टडी करनी थी उसे। और उसने देखा 24 घंटे होते होते दोनों समान समय दिखा रही है। हालांकि अंतर रखा गया था, लेकिन फिर से वो समान दिखा रही है। और उस वैज्ञानिक ने इसको नाम दे दिया लयबद्धता, हार्मनी। फिर कहते हैं अभी 50-75 साल पहले कार्ल गुस्ताव जुंग, एक साइकोथेरेपिस्ट, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ऐसे साइकोथेरेपिस्ट है विदेश का, उसने इस चीज को वैज्ञानिक रीति से स्टडी किया और इसको नाम दिया लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी, समकालीनता का नियम। और उसने कहा कि ये जो नियम है ये सिर्फ वीणा के केस में नहीं, सिर्फ सितार के केस में नहीं, सिर्फ घड़ियों के केस पर लागू नहीं होता है, जीवन के हर आयाम में लागू होता है। किसी व्यक्ति के कंपन अगर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो तो अपने कंपन की शक्ति से वो दूसरे के दिल के भी कंपन की लय अपने साथ बिठा सकता है, और यही बाबा करता है परमधाम में। शक्तिशाली है ना वो बड़ा है ना, परम आत्मा है ना वो, हम तो सिर्फ आत्मा है। तो जब हम जाके समर्पित होके वहां बैठ जाते हैं, उसकी शक्तिशाली किरणें, उसके शक्तिशाली कंपन मेरे अंदर जो पड़े तो है ना बीज प्रेम स्वरूप, मारे मेरे में भी वही कंपन है पर चुपचाप सोए हुए हैं अभी, लेकिन वो जाके उनको ऐसे छेड़ देता है कि वो भी उसी तरह प्रकंपित होना आरंभ हो जाते हैं। और उस तरह, और ये वाले जो दूसरा फोल्डर है ना पापों वाला, काम क्रोध वाला, उनके प्रकंपन सो जाते हैं और ये वाले प्रकंपन जाग जाते हैं। और इसलिए फिर ऐसा पावरफुल योग करके जब हम कर्म क्षेत्र में उतरेंगे, हम देखेंगे बिना मेरे प्रयास के मेरे से प्रेम बह रहा है, मेरे से शांति बह रही है, परिस्थिति भले प्रतिकूल है पर वो मेरी स्थिति को डिगाने में असमर्थ है। इसी को ही कहेंगे देही अभिमानी स्थिति, इसी को ही कहेंगे पारस बुद्धि। और पारस बुद्धि है तो बेड़ा पार, और अगर पत्थर बुद्धि है तो बेड़ा गर्क। तो अपनी बुद्धि को पारस बनाते चलो।